ठीक है, अलहमद लाला वकफ़ा वसलाम अलबादिन अस्तफ़ा
Recording in
अम्माबाद
progress.
फ़ाउज़बिल्लाशैतरजीम बसमीम इनल्लाकतूसलबी याजी आमनु सल्लि वसलम तस्लिमा सैदना महमद आल सैदना महमदन वबारक वसलम اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. क्या पढ़ रहे थे हम आपकी क्लास में, क्या वाक्य डिस्कस किया था? कोई रिवाइज करते हैं घर जाके या क्लास में आने से पहले? जाने के बाद रिवाइज करना तो मुश्किल काम होता है, लेकिन आने से पहले रिवाइज करना इतना मुश्किल काम नहीं है. आने से पहले थोड़ा सा अगर रिवाइज कर लें. जी
जोर
है, जोर से बोले ना.
से
ये बयान बहन मिली थी. अच्छा, वो तो पहले बात हुई थी, उसके बाद क्या बात हुई? जी
शैतान ने मुसलमान के नौजवान ने बात डाली थी कि कुरैश के सरदार को सिर्फ मार दे रहे हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार हैं, पर जबकि हम उनके साथ इतने कुर्बान हैं.
ठीक है ना. हाँ, ये वाला वाकया डिस्कस हुआ था कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने गज़वे हुनैन का जो माल असबाब माल गनीमत जमा हुआ था, जो बहुत ज्यादा था, तो वो जो है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने सारा का सारा जो नए नए लोग मुसलमान हुए थे कुरैश के फतह मक्का के बाद, तो उनमें तकसीम करना शुरू कर दिया था. किसी को 100 ऊँट दे दिए, किसी को 200 ऊँट दे दिए, किसी को 300 ऊँट दे दिए. तो ऐसे मौके पर ना कुछ नौजवान सहाबा अंसारी सहाबा, उन्होंने ये बात करनी शुरू करी कि ये तो हमें तो कुछ भी नहीं दिया इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने, तो ऐसा क्यों, तो ये तो अपने रिश्तेदारों को दे रहे थे. तो उसके ऊपर ना नबी अलैहिस्सलाम ने जो तकरीर करी थी वो हमने पिछले हफ्ते आपको पढ़ के पूरी की पूरी सुनाई थी. उसका उर्दू तर्जुमा ज़ाहिर है, ठीक है. तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ओकेजन था, और आप की तकरीर सुन करके फिर क्या हुआ था, उसके ऊपर क्या रद्द अमल हुआ था, क्या रिएक्शन हुआ था सहाबा का? जी अंदर सॉरी रेहान, लोगों की चीखें निकल गई थी. ठीक है, चीखें निकल गई का एक मुहावरा होता है, जरूरी नहीं इसका मतलब ये हो कि लोग जो है वो चीखना शुरू हो गए हों, बल्कि चीखें निकलने का मतलब यह है कि लोग इतना रोए कि आवाजें जो है ना वो बुलंद हो गई, इतना रोए हर आंख जो है वो तर हो गई, और रोते रोते दाढ़ियां भी गीली हो गई, इतना आंसू बहा, इतना आंसू बहा कि दाढ़ियां तक जो है ना वो अंसार साहब की उससे तर हो गई थी. और उन्होंने कहा कि हम इस तकसीम पर दिलो जान से राजी हैं कि अल्लाह का रसूल हमारे हिस्से में आया और दुनिया का माल असबाब जो है ना वो दूसरों के हिस्से में चला गया. यानी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जहां सहाबा जहां अंसार जाएंगे मैं वहीं जाऊंगा, और अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसला ना होता कि मैंने मक्का मुकर्रमा में पैदा होना है और फिर हिजरत करके मैंने मदीना मुनव्वरा में आना होता है, अगर ऐसा ना होता ना, अगर इट वॉज फॉर मी टू डिसाइड, अगर मेरे ऊपर छोड़ा जाता ना कि आप कहाँ पैदा होना पसंद फरमाएंगे, तो मैं कहता मैं तो अंसार मदीना के साथ मदीना मुनव्वरा में पैदा होना पसंद करूंगा. ठीक है, तो अगर हिजरत अमर तकदीरी ना होता तो मैं भी अंसार में से होता, यानी मदीना मुनव्वरा वालों में से होता. और आखिर में तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम बन गए मदीना मुनव्वरा वाले ही. ठीक है, मदीना तैयबा जो है नबी अलैहिस्सलाम सलाम का शहर कहलाता है, मदीना तो नबी. ठीक है, और मक्का मुकरमा जो है वो अल्लाह ताला का शहर कहलाता है. तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को एडॉप्ट कर लिया. अच्छा, तो ये वाकया पढ़ करके फिर हम आगे बढ़ते हैं. चंद छोटे 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 वाकयात हैं, वो हम चाह रहे थे कि आज कर लें इस क्लास में, फिर उसके बाद रमजानुल मुबारक शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह. तो ये सीरत क्लास हमारी रमजानुल मुबारक में होती नहीं है, क्योंकि फिर वो रोजाना एक अलग तरतीब चल रही होती है उसमें. तो उन वाकयात को डिस्कस करने से पहले एक चीज, ठीक है, वो अगर हम आपसे पूछें कि ये तो हो गई ना, पिछले हफ्ते बात हो गई थी कि भाई नौजवान सहाबी थे वो, ठीक है, जिनके दिलों के अंदर ये बात आई, तो जो जरा यंग होते हैं उनके जज्बात भी जरा होते हैं और वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, तो इस वजह से उनके दिल में बात आई. लेकिन यानी जैसे कि शैतान ने उनके दिल में बात डाल दी, ठीक है ना। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, विच इज टू एक्सप्लेन इन अ वेरी गुड वे कि उन सहाबा के दिल में ये बात क्यों आई, ठीक है ना। हमारे अकाबरीन तो दोनों तरह से बात करते हैं, एक तो शैतान का भी मेंशन करते हैं कि भाई शैतान ने दिल में बात डाल दी, शैतान का कसूर था लेकिन उन्होंने तौबा कर ली और शैतान के ऊपर गालिब आ गए, तौबा कर ली। लेकिन दूसरी तरफ ये भी डालते हैं कि कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि भाई नहीं, इसकी जो है ना ये भी एक वजह थी कि जिसकी वजह से उन्होंने काम किया, जिसमें बुराई कोई थी नहीं, यानी बिल्कुल अच्छा काम किया उन्होंने जब वो इस तरह से सोच रहे थे कि नबी अलैहि सलाम ने हमें तोहफा क्यों नहीं दिया, तो बड़ा अच्छा सोच रहे थे एक्चुअली वो, ठीक है ना। तो उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, वो बड़ी मजे की है, ठीक है। वो क्या है कि आपने शायद सुना हो, या आप सुन लें अगर नहीं सुना, कि नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक मशहूर है, ठीक है, बड़ी कॉमनली लोगों को पता होती है हदीस, खवातीन को ज्यादा पता होती है तो इस वजह से वो अमल भी खूब करती हैं इसके ऊपर। वो है तहादौ तहाबू, तहादौ के हदिया दिया करो आपस में एक दूसरे को, तहाबू। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, ठीक है। तो हदिया का जो ताल्लुक है ना, ये मोहब्बत के साथ है। एक दूसरे को जब आप हदिया देते हैं ना, कोई किसी को देता है, ठीक है, वो उसको रिस्पॉन्ड करे उसी वक्त करे या बाद में कभी करे, लेकिन बेसिकली हदिया देना मोहब्बत की अलामत होती है, ठीक है। और इससे जो है वो मोहब्बत मजीद बढ़ती है। तो अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब इन सहाबाए कराम को नहीं दिया, अब ये तो हदीयतन दे रहे थे ना, एक तो होता है ना कि लश्कर के अंदर तकसीम कर दिया माल गनीमत, तो वो तो बाय लॉ है कि जिसको इतना मिलेगा इसको इतना मिलेगा इसको इतना मिलेगा, 1/5 करके उसके बाद इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिया। लेकिन इसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ये एडिशनल दे रहे थे, इसको इतना ज्यादा दे दिया उसको इतना, तो ये हदीये की तारीफ में भी आ सकता है कि हदीयतन दे रहे थे नबी अलैहिस्सलाम। तो इन सहाबा ने कहा कि भाई हदिया जो है ये तो मोहब्बत की अलामत होता है, नबी अलैहिस्सलाम हमें हदिया नहीं दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कम हो गई है, हमसे कोई ऐसा कसूर हो गया या कोई ऐसी बात हो गई कि मोहब्बत जो है वो कम हो गई। इसके ऊपर इन लोगों को परेशानी शुरू हो गई, ठीक है ना। और उन्होंने आपस में बात करनी शुरू करी कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो अब इस तरीके से जब हम इस बात को देखें तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा कि शैतान ने इनको बरगला दिया, शैतान ने गलत दिल में गलत बात डाल दी, नहीं वो भी उसकी भी जरूरत नहीं रही अब तो, ठीक है। बहरहाल तो सहाबा कराम जो है ना, उनकी तरफ से हमें कोई ना कोई अच्छा एक्सक्यूज अगर बना दें वो सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, बेहतरीन कोई तावील बना दे। आगे एक और भी वाक्य आ रहा है इसी तरीके का सहाबी के बारे में, तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम वो भी हमारे काबरीन ने दूसरा भी तरीका रखा है कि भाई कोई दिल में ऐसी गलत बात आ गई लेकिन तौबा कर ली और अल्लाह ताला से ने जो है उनकी तौबा कबूल कर लिया और उनको उनके साथ राजी हो गए। इस तरह के भी बहुत सारे वाकयात आए, ओहद का वाकया भी इसके ऊपर है, और जो है वो जो गजवा बनी मुस्तलक वाला वाकया था, वाकया इफ्क, तो वो भी इसके ऊपर गवाह है। और भी बहुत सारे वाक्य आते हैं कि सहाबा से गलती हुई लेकिन तौबा कर लेते थे। हमारी मसला ये होता है, हम गलती करते हैं और गलतियों को ना कुछ जस्टिफाई करते हैं, हुज्जत बनाते हैं, तौबा नहीं करते, मानते नहीं अपनी गलती को। तो हम में और सहाबा में ये बड़ा फर्क है, ठीक है। हमें भी सहाबा किराम के तरीके पे चलते हुए अगर भी इंसान गलती का पुतला हो जाती है लेकिन तौबा कर लेनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो एक वाकया छोटा सा ये हुआ कि ये तो आपको बता दिया था कि उम्रा हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उम्रा किया मक्का मुकरमा जा करके, और ये आप का दूसरा उम्रा था। फिर आप ने उताब बिन हुसैद रजी अल्लाह को मक्का मुकरमा का वाली बना दिया और मुआज बिन जबल रजान को दीन सिखाने के लिए मक्का मुकरमा में छोड़ दिया। और फिर 27 ज़िलक़ादुल हराम को, ज़िलक़ादा 27 को ये आप साहब अकराम के साथ मदीना मुनव्वरा वापस आ गए, ठीक है। इसके बाद एक, क्योंकि साल वही था ज़िलक़ादा में नबी अलैहिस्सलाम वापस आए थे, तो ज़िलक़ादा के बाद कौन सा महीना होता है, ज़िलहज्जा का महीना, ठीक है। तो अब आप सरसरम वापस नहीं गए हज करने के लिए कि अभी हज का महीना आ गया तो मदीना मुनव्वरा से वापस जो है मक्का मुकरमा जाना है, इस साल नहीं गए वापस, बल्कि इस साल जो है ना फिर उताब बिन उसैद जो मक्का मुकरमा के गवर्नर या वाली बना दिए गए थे, उन्होंने सारे मुसलमानों को फिर हज करवाया, यानी इमाम हज जो है वो उताब बिन उसैद रज़ी अल्लाह अन्हु बने, ठीक है। तो हज हुआ जैसे कि अरब पहले भी हज किया करते थे, उसमें से जो मुशरिकाना चीजें थी वो खत्म कर दी गई, और जो तरीका इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हज का था, क्योंकि हज कहाँ से शुरू हुआ था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त से शुरू हुआ था, ठीक है, वो अब तक चला आ रहा था। अच्छा, किसी साल फिर जिलहज्जा के अंदर ही, यानी नेक्स्ट मंथ, आखिरी मंथ इस साल का, कौन सा साल था, कौन सा साल चल रहा था,
अच्छा
वो तो महीना चल रहा है जिलहज्जा का, साल कौन सा था, 8 हिजरी ना, मक्का मुकरमा फतह 8 हिजरी के अंदर हुआ था, तो 8 हिजरी का आखिरी महीना है जिलहज्जा का। तो इसी में ना नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इब्राहिम पैदा हुए, मारिया किबतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम की जो एक बीवी थी। ये कहाँ से आई थी मारिया किबतिया, किसी को याद, मारिया किबतिया कहाँ से आई थी, ये बताएं।
ये
हाँ, मिस्र के बादशाह ने जो है ना, वो अपनी बेटी नबी अलैहिस्सलाम को बांदी के तौर पे तोहफे में भेज दी थी, ठीक है ना, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनसे शादी कर ली थी और इनको जो है वो अपनी बीवी बना लिया था, यानी प्रॉपर बीवी, पूरी बीवी बना, पहले तो बांदी के तौर पर आई थी लेकिन फिर वो बीवी बन गई थी, और फिर उनसे जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के बेटे इब्राहिम पैदा हुए थे, ठीक है। इनका भी फिर कुछ अरसे में इंतकाल हो गया था। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे, और बाकी बेटे जो थे वो सारे के सारे कहाँ से, कौन सी बीवी से आपसे जन्म के थे, हजर खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से, ठीक है। बेटियां भी सारी की सारी उन्हीं की से थी, और बेटे भी तो जो दो हुए थे, या कोई कहता है तीन हुए थे, किसी के मुताबिक एक होया था, लेकिन वो सब उन्हीं से थे, कासिम या ताहिर तैयब वगैरह, मुख्तलिफ नाम मशहूर है, कासिम तो नाम है। अच्छा, फिर इसके बाद इसी साल में ना नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा कराम को मुख्तलिफ कबीलों की तरफ भेजना शुरू किया कि वो सदका और खैरात वगैरह वसूल करके मदीना मुनव्वरा लेकर के आए, कलेक्ट करके, ठीक है। तो सदकात की वसूली के लिए, यानी बेसिकली जकात की वसूली के लिए, ठीक है, क्योंकि जकात जो है वो फर्ज है। तो नबी अलैहिस्सलाम ना अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा करते थे मुख्तलिफ इलाकों में, इस कबीले भेज दिया, वो वहां की जकात इकट्ठी करके मदीना मुनव्वरा लेकर के आते थे, वो वहां की जकात इकट्ठी करके मदीना मुनव्वरा लेकर के आते थे, और फिर नबी अलैहिस्सलाम सलाम उस जकात को जो है वो तकसीम किया करते थे गरीब मुसलमानों में या नए मुसलमान होने वालों में, मुख्तलिफ जो इसके जकात के मसारिफ हैं उनमें। तो अमर बिन आस को अम्मान की तरफ भेजा, और काब बिन उमैर को शाम के एक इलाके की तरफ भेजा। अच्छा, काब बिन उमैर जो है उनको एक्चुअली गजबे वो सॉरी लड़ाई करने के लिए भेजा था, उनको दावत देने के लिए, और दावत कबूल नहीं करेंगे तो उनके साथ जिहाद करना है। तो ये जो है ना, वो सिर्फ 15 आदमियों को लेकर के गए थे उस शाम के इलाके की तरफ। तो वहां के लोगों ने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया, और ये 15 आदमी जो है वो मुकाबला नहीं कर सके, सब के सब शहीद हो गए सिवाय एक के, ठीक है। तो 15 आदमियों को उमैर बिन काब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ भेजा था, एक के अलावा सबको जो है वो काफिरों ने शहीद कर दिया, ठीक है। तो ऐसा भी नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ करता था, और पीछे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें पढ़ चुके हैं जिसके अंदर मुसलमान जो है वो नाकाम होके आते थे, ठीक है, यानी जीत करके नहीं आते थे, सबको शहीद कर दिया, सबको जो है वो बाकियों को कैदी बना लिया। वो जो हमने हुफाज की जमात के बारे में पढ़ा था, एक तो मौके पर 10 को भेजा था तो 10 के 10 को शहीद कर दिया था, एक मौके पर 70 को भेजा था, 70 के 70 शहीद हो गए थे, और एक दो को जो है वो कैदी बना करके ले गए थे, ठीक है। तो ये सब कुछ भी होता है दुनिया के अंदर, ये नहीं होता कि आप इस्लाम पर हैं और आप नेकी पर हैं और आप जो है वो हक पर हैं, इसका मतलब ये है कि हर लड़ाई में जाकर के आपने बंदे को मार करके आना है, आपने नहीं मरना है ना, नहीं ऐसा नहीं होता। शहीद कब होंगे, ठीक है ना, मुसलमान तो शहीद होने की दुआ करता है, तमन्ना करता है, तो अगर मुसलमान शहीद नहीं होंगे तो फिर ये तमन्ना भी पूरी नहीं होगी। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए जो कंफर्म जीत रखी है ना, वो मरने के बाद की रखी है, दुनिया की कोई जीत कंफर्म नहीं होती, ठीक है। तो दुनिया में तो हार जीत चलती रहती है, तो इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए कि अच्छा मुसलमान कैसे मर गए, ये तो हक पर थे, ये कैसे मर गए, इनके साथ तो फरिश्ते होने चाहिए थे, ऐसा नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ, तो आज के ज़माने में कैसे हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर जो है वो एक बड़ी मज़े की ज़बरदस्त बात हज़रत ने यहाँ पे लिखी है, तो वो भी आपके सामने, अगर चेक है थोड़ी सी बच्चों के लेवल की इतनी नहीं है, लेकिन बड़ी उन्होंने बेहतरीन बात लिखी कि गजवात की इब्तिदा, ठीक है, यानी जो एक्चुअल फाइटिंग होती थी ना नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में काफिरों से, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई थी, इसकी इब्तिदा हुई थी, पहला गजवा कौन सा था, गजवाए बदर। ठीक है भाई, तो गजवाए बदर के अंदर क्या हुआ मुसलमानों के साथ कि पूरी फतह नसीब हुई। ठीक है, और फिर दूसरा गजवा कैसा था, गजवाए ओहद था। गजवाए ओहद के अंदर मुसलमानों को फतह नसीब नहीं हुई थी, ठीक है ना, शिकस्त भी नहीं हुई थी पूरी तरीके से कि वो गालिब आ जाए और मुसलमानों को कैदी बना ले, एक मुसलमान को भी कैदी नहीं बना सके थे गजवाए उहद के अंदर, लेकिन फतह तो नहीं कहेंगे ना इसको, तो उलमा ने शिकस्त ही लिखा है मुसलमानों के लिए गजवाए उहद के अंदर। तो बदर में मुकम्मल फतह हुई और उहद के अंदर जो है वो शिकस्त का सामना मुसलमानों को करना पड़ा था। ठीक है, ये इब्तिदा हुई थी गजवात की, और इस गजवे की इंतहा किसके ऊपर हुई जाकर के, जिसमें कि एक्चुअल फाइटिंग हुई। आगे एक और गजवा आने वाला है, वो हम इंशाल्लाह रमजान के बाद ही पढ़ेंगे, गजवा तबू, उसमें कोई फाइटिंग वाइटिंग नहीं हुई थी। ठीक है ना, फाइटिंग आखिरी कब हुई थी, गजवा हुनैन के अंदर। गजवा हुनैन के अंदर क्या हुआ, इब्तिदा में क्या हुआ और इंतहा में क्या हुआ, ये हम कर लो। गजवा हुनैन शुरू में क्या हुआ था उसके अंदर, शुरू में जो है ना वो मुसलमानों को उसी तरह का मामला पेश आया जैसा उहद में पेश आया था, है ना, केओस। ठीक है ना, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं जान बचाने के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, हत्ता के जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के शहादत की जो है वो गलत खबर फैल गई, और भी ज्यादा जो जिनमें हिम्मत थी वो भी बैठ गए। ठीक है ना, कि अब नबी अलैहिस्सलाम नहीं, अब हम क्या करें, अब लड़के लड़ने का क्या फायदा, अब अपनी जान बचाने का क्या फायदा। ठीक है ना, तो कमोबेश वैसी ही कैफियत जो है वो हुनैन के अंदर हुई। ठीक है, लेकिन खत्म कैसे हुआ हुनैन के, फरिश्तों की भी मदद आई, मुसलमान भी जो है वो रीग्रुप होना शुरू हो गए और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह अता फरमा दी। ठीक है ना, तो इब्तिदा कहाँ से हुई थी, फरिश्तों की मदद और फतह से। इंतहा कहाँ पर हुई, फरिश्तों की मदद और फतह से। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान इनकैप्सुलेटेड जो है वो बाकी सारे के सारे वाकयात हैं, इन दोनों के अंदर बंद हैं। इधर भी फतह, इधर भी फतह, लेकिन फतह भी दोनों किस शक्ल में हुई, कैसे हुई, फरिश्तों की मदद से, फरिश्तों की मदद से। ठीक है ना, लेकिन फरिश्तों की मदद आई कैसे, जब नबी अलैहिस्सलाम की बात मान ली, है ना। शुरू में भी मुमकिन मुमकिन था, कह देते कि नबी नबी अलैहिस्सलाम, इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट, वी डोंट हैव एनीथिंग, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, है ना, हम यहाँ पे लड़ने के लिए आए भी नहीं थे, यहाँ पे तो हम काफिला लूटने के लिए आए थे, तलवारें भी नहीं है, घोड़े भी नहीं है, फलाना भी नहीं है, ढंगाना भी नहीं है, लेट्स गो बैक, छोड़े छोड़े। नबी रसूल ने कहा नहीं जी, हमने तो लड़ना है, तो लड़ना है, अब कुछ हो जाए हमने लड़ना है। इसके ऊपर अल्लाह ताला ने फरिश्तों की मदद अता फरमाई। फरिश्तों की मदद भी जो है ना वो फ्री में नहीं आती, है ना, फरिश्तों की मदद जो है ना नाफरमानी से नहीं आती, फरिश्तों की मदद इनडिसिप्लिन से नहीं आती, डिसिप्लिन के बाद फरिश्तों की मदद आती है, कामयाबी फरिश्तों की मदद से हो जाती है। ठीक है ना, आखिरी में भी बिल्कुल यही हुआ। ठीक है, इसी वजह से हमारे जो अकाबर उलमाए कराम है ना, वो ये भी फरमाते हैं कि ये तो हो गया ना फतह से इब्तिदा और फतह पे इंतहा। ठीक है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ के अंदर ये हो गया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की लाइफ में भी ऐसा ही होगा। नबी अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है ना उसकी लाइफ भी ऐसी होगी, उम्मत की लाइफ इब्तिदा हुई फरिश्तों की मदद और फतह से, और उम्मत की लाइफ का जो बिल्कुल आखिरी होगा ना एपिसोड, वो भी फरिश्तों की मदद के जरिए से काफिरों के ऊपर फतह के जरिए से की शक्ल में होगा। ठीक है ना, तो ये जो आखिर में काफिरों से लड़ाई होगी ना, ये एटम बमों से नहीं होगी, ठीक है ना, ये फरिश्तों की मदद से होगी। ठीक है, तो ये तो कम अज़ कम एक अकाबर से तो अपने कानों से सारी चीज़ें सुना है, हज़रत मौलाना सैयद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उस ज़माने में दामत बरकातुहुम थे जब उनसे सुना था ये। तो बहरहाल ये हो गया, एक बड़ी अच्छी किस्म की ना एक्सप्लेनेशन हुई आपसे सुन की ज़िंदगी के बारे में, फतह और शिकस्त के बारे में। इसके बाद फिर छोटे छोटे वो हैं कि भाई किन किन को कहाँ कहाँ भेजा था, फलाने को मुआद बिन जबल को फिर यमन के इलाके में भेज दिया, अबू मूसा अशरी को अदन के इलाके में भेज दिया, किसी को यमन के इलाके में, किसी को किसी इलाके में भेज दिया, ये सब कुछ होता रहा। अब इसके बाद जो है ना वो 9th हिजरी आया, 9 हिजरी, जुलहज्जा खत्म हो गया, अगला साल 9 हिजरी मुहर्रम के साथ शुरू हो गया। तो इस 9 हिजरी के अंदर फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जो है ना वो छोटे छोटे सराया रवाना किए, यानी जो सहाबी के साथ कहीं लड़ने के लिए भेजते थे, या जो पहले से मुसलमान हो चुके थे कबीले, वहां पर सदकात और खैरात और जकात की वसूली के लिए सहाबों को रवाना किया। तो इसमें चंद बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। एक तो था कि सरिया उयैना बिन हसन फजारी, ठीक है, तो ये मुहर्रमुल हराम 9 हिजरी में नबी अलैहिस्सलाम ने बिशर बिन सुफियान अदवी को सदकात वसूल करने के लिए एक कबीले की तरफ भेजा। तो बाकी लोग तो सदकात देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वहां पर ना कुछ लोग थे जिनका एक छोटा सब कबीला था, बनू तमीम, ठीक है। बनू तमीम वालों ने कहा कि नहीं, हम ठेंगा भी नहीं देंगे, सही है, हम कहते हैं ठेंगा, उन्होंने कहा हम तलवार भी नहीं देंगे, हम कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। तो बिशर जो है ना ये देख करके वापस आ गए। उसके बाद फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उयैना बिन हसन फजारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को 50 सवारों पर इस जगह पर भेजा जहाँ पे बनू तमीम रहते थे। तो थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई हुई, ये लोग जो है ना वो 11 मर्दों को, 21 औरतों को और 30 बच्चों को गिरफ्तार करके मदीना मुनव्वरा ले आए, ठीक है ना। बनी तमीम से लड़ाई हुई और गिरफ्तार करके कुछ लोगों को, ये लोग सहाबी जो है वो मदीना मुनव्वरा लेकर के आ गए। तो अब जो है ना बनू तमीम ने इनके पीछे पीछे अपना एक डेलीगेशन भेजा, अपना एक वफ्द भेजा, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के पास। तो उनमें ना कुछ लोग थे, अत्तार बिन हाजिब और कैस बिन आसिम और अकरा बिन हाबिस। अकरा बिन हाबिस बड़ा पॉपुलर फेमस नेम है। तो इन लोगों के साथ न, उन लोगों ने, बनू तमीम वालों ने मदीना मुनव्वरा एक वफ्द भेजा कि भाई जो हमारे कैदी वैदी आप लेकर के चले गए ना, ये हमारे पास, हमें वापस करें, ठीक है। तो ये लोग जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे ना, तो इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे के पीछे खड़े होकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। इन्होंने तो नहीं पढ़ा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो पढ़ेंगे ना, तो या मोहम्मद बाहर आओ, बात करो हमसे, ठीक है। और कहना शुरू कर दिया कि हमसे जो है ना वो शायरी में और खुतबे के अंदर हमसे वो लड़ाई करो, ठीक है ना, शायरी की शक्ल में, खुतबे की शक्ल में, ठीक है। और कहने लगे कि हम इतना बेहतरीन शायरी करते हैं और हम इतना बेहतरीन जो है ना वो फकरिया कलाम करते हैं, जिसमें अपना फखर बयान करते हैं, अपनी इज्जत बयान करते हैं, कि कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हम जिसकी तारीफ करते हैं ना वही अच्छा होता है, और हम जिसकी मजम्मत कर दें वही बुरा होता है। ये इन्होंने अल्फाज कहे, ठीक है ना। तो ललकारते हैं नबी अलैहिस्सलाम को कि बाहर आओ और हमसे जो है ना वो इसमें मुकाबला करके दिखाओ, ठीक है ना। अरबों की बड़ी शान थी, क्या लैंग्वेज उनकी जबरदस्त किस्म की अरबी जुबान थी, उसके ऊपर बड़ा फख्र था अरबों को। तो ऐसे उन्होंने बात करी, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो बाहर तशरीफ लाए और फरमाया कि भाई ये जो तुम कह रहे हो ना कि हम जिसकी तारीफ कर दें वही जीनत वाला है और हम जिसकी मजम्मत कर दें ना वही ऐब वाला है, ये तो अल्लाह की शान है, राइट। ये तो ना तुम कह सकते हो ना मैं ये काम कह सकता हूँ, ये तो अल्लाह की शान है कि अल्लाह ही ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो फरमाया कि ये शान तो अल्लाह की है, बाकी मैं ना तो शायर हूँ, मुझे शायरी वायरी नहीं आती, ठीक है ना, मैं ना तो शायर हूँ और ना मुझको फखर करने की इजाजत दी गई है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आराम से अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया इससे, ठीक है ना। ये नहीं कि बस अब तो चैलेंज हो गया है, अब तो बाय हुक और बाय क्रोक चैलेंज का मुकाबला करना है, नहीं, सीधा सीधा बता दिया मैं नहीं करता फसर वफर भाई, ठीक है, और मुझे शायरी की इजाजत नहीं दी गई है जी, अभी ठहर है ना। तो इसके ऊपर ना आप में से अक्सर को तो माशाल्लाह याद होगा, सूरह हुजरात की जो आयत है वो नाजिल हुई इस वाक्य के ऊपर। अल्लाह ताला फरमाया इन्ना लजीना युनादूना का मिन वराइल हुजराती, कि बेशक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हुजरात से पीछे जो है ना वो जाकर के आवाजें देते हैं, युनादू निदा करते हैं, आवाज देते हैं, अक्सर हम ला याकिलून, इनमें से अक्सर है ना इनकी अक्ल काम नहीं करती, बेवकूफ किस्म के लोग हैं। वलो अन्नहुम सबरो, अगर ये लोग थोड़ा सबर कर लेते ना, हत्ता तखरुजा इलैहिम, हत्ता के आप जो है वो बाहर खुद निकल आते इनकी तरफ, ठीक है ना, लकाना खैरल्लहुम, ये इनके लिए ज्यादा अच्छा होता। सबर कर लेते तुम पीछे खड़े होकर के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किस तरह से पुकार रहे हो और चैलेंज दे रहे हो बाहर से, ये किस किस्म की तमीज है, बदतमीजी वाली बात है। तो लेकिन फिर फरमाया वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह ताला जो है ना माफ करने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है, गोया के इंडिकेशन कर दी कि अभी ये लोग लाइन पे आ जाएंगे थोड़ी देर में, ना, अभी इतना कर रहे हैं, थोड़ी देर में लाइन पे आ जाएंगे। तो इस पे ना फिर नबी अलैहि सलाम ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग जरा आ जाओ, और अपने फिर सहाबा को बुला लिया, और अतारत बिन हाजिब तमीमी, ठीक है, जो लोग आए हुए थे ना उनमें से एक से कहा कि तुम अब कहो जो कहना है, तुम क्या कहना चाहते हो तुम, ठीक है। तो इन्होंने ना खड़े होकर के बनी तमीम, बनू तमीम की तरफ से एक खुतबा दिया, ठीक है। पहले तो अल्लाह ताला की हमद करी, देखें काफिर थे लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह लहू अलैना अल्फजल, ठीक है ना, हमारे लिए फजल है, अल्लाह के लिए सारी तारीफें तो हैं लेकिन फजल हमारे लिए, ठीक है ना, ये नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें फजल दिया बल्कि अपने ऊपर फजल खुद से कर दी, ये काफिर की पहचान होती है। अल्लाह पे तो ईमान रखता है लेकिन साथ साथ जो है ना वो अपने नफ्स को भी खुदा मानता है कि मेरे नफ्स ने मुझे फजल दे दिया। मुसलमान कहते हैं नहीं, जो किया अल्लाह ही ने किया, मेरे नफ्स ने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसी इन्होंने बात करी कि जिसने तो अच्छा, बहरहाल तर्जुमा शायद से थोड़ा गलत भी हो गया एक्चुअली, बहरहाल लहू अलैना फजल के जिसने हमको फजीलत दी, ऐसे नहीं थे। हाँ तो मैं तो अल्फाज वापस लेता हूँ, ये इन्होंने नहीं कहा था। तो जैसे हम नेक कामों में सर्व करते हैं और हमको अहले मशरक में सबसे ज्यादा इज्जत वाला और कसरत वाला और कुव्वत और शौकत वाला बनाया, बस लोगों में हम जैसा कौन है, ठीक है, इसमें फखर वाली कलाम है कि लोगों में हम जैसा कौन है, क्या हम लोगों के सरदार उनसे बालातर नहीं, हमारे सरदार ज्यादा अच्छे हैं दूसरे लोगों के सरदारों से, बस जो हमसे फखर करना मुकाबला करना चाहे, फखर में मुकाबला करना चाहे, तो उसको चाहिए कि हमारे जैसे मफाखिर और मनाकिब शुमार करे जैसे हमने अपने मफाखिर बयान किए हैं, ठीक है, यानी हम जैसे जैसे जबरदस्त कलाम करते हैं ना अपने फखर में, कोई और करके दिखाए जरा, हम चाहें तो अपने मफाखिर के बारे में तवील तकरीर कर सकते हैं लेकिन हमें अपने मफाखिर बयान करने से शर्म आती है, कर भी रहे हैं और शर्म भी आती है, ठीक है। मैंने ये इसलिए कहा है कि अगर कोई इसके मिसल जैसे बेहतर ला सके तो लाए, ठीक है। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत साबित बिन कैस अंसारी रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म किया कि तुम इसका जवाब दो, ठीक है। तो साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए और उन्होंने फिर यही अल्लाह ताला की हमसे बात शुरू करी, अल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अस्समावाति वल अर्ध खलक़हु क़ज़ा फ़ीहिन्न अमरहु, ठीक है। उन्होंने बड़ी जबरदस्त लंबा सा खुतबा दिया, उसके बाद जो है ना फिर उनका एक शायर खड़ा हुआ, ज़बरकान बिन बदर, उसने फिर शेर व शायरी के अंदर बात करी, इन्होंने तो खुतबे में बात करी थी ना पहले बंदे ने, अब उसने शेर व शायरी के अंदर मफाखिर बयान करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उसके जवाब के लिए हजरत हसान बिन साबित रदान को हुक्म दिया, हसान आप जवाब दें इसका। हसान बिन साबित रदान उन्होंने फिल बदी शेर पढ़ने शुरू कर दी, फिल बदी कहते हैं ऐसे शेर पढ़ने को जो कि आपने पहले से नहीं लिखे हुए थे, पहले से नहीं सोचे हुए थे, उसी मौके पर इम्प्रॉप, क्या कहते हैं, इम्प्रॉप्टू, इम्प्रॉप्टू नहीं, उसी वक्त जो है ना वो आपने शेर पढ़ने शुरू कर दिए। तो जब वो पढ़ करके बैठे ना तो अकरा बिन हाबिस खड़े हुए और फरमाने लगे कि खुदा की कसम आपका खतीब हमारे खतीब से और आपका शायर हमारे शायर से बेहतर था, ठीक है, और सारे के सारे फिर मुसलमान हो गए, ठीक है भाई मोहम्मद साहब, सारे मुसलमान हो गए, सही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको इनाम भी दिए और जो कैदी लेकर के आए थे ना वो सारे के सारे कैदी वापस कर दिया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सरिया था जिसके नतीजे में बनू तमीम जो है वो मुसलमान हो गए, लेकिन इन्होंने जो है वो एक अलग ही तरीके से लड़ाई लड़ी, है ना, जुबानी लड़ाई, कलामी लड़ाई, अजीब लोग थे ये लोग भी। बहरहाल फिर उसके बाद जो है ना वो एक वाकया पेश आया जिसका जिक्र भी सूरह हुजरात के अंदर है, ठीक है। वो वाकया था कि नबी अलैहिस्सलाम ने वलीद बिन उकबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनी अल मुस्तलक की तरफ भेजा उनसे सदकात वसूल करने के लिए, जकात वसूल करने के लिए, ठीक है। तो जब ये वहां पर करीब पहुंचे ना तो बनी मुसलक वालों को जो है वो पता चल गया कि हाँ भाई वो आ रहे हैं सदकात वसूल करने के लिए, ये लोग मुसलमान हो चुके थे। इनका वाकया किसी को याद है, हमने कहाँ कब पढ़ा था जी, हम तो वाकया इफ्क, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम की एक जौजा हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा जो थी वो इसी कबीले की थी, ठीक है, तो वो मुसलमान हुई थी और फिर उनकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कबीले के कैदियों को आज़ाद भी कर दिया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला सफ़र पर साथ थी, उन्होंने फरमाया कि मैंने कभी किसी औरत को नहीं देखा कि अपने पूरे कबीले के लिए इतनी फ़ायदेमंद हुई, इनकी वजह से पूरा कबीला आज़ाद हो गया, जुबैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, यानी अपनी सौकन के लिए कितने अच्छे जज्बात थे, ठीक है ना। और इसी वाक़े में फिर वापसी पर हज़रत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ वो हार वाला वाकया पेश आया था, जिसके ऊपर मुनाफिकीन ने अब्दुल्लाह बिन उबई और दूसरों ने जो है वो इल्जाम लगाया था, और फिर सारा का सारा वो बड़ा लंबा चला था, वो 1 महीने तक वाकया चला था। ठीक है, तो कबीला बनी मुस्तलक जो था ये तो मुसलमान हो चुका था। तो अकरा ये वरीद बिन अकबा जब उकबा जब वहां पहुंच रहे थे ना, तो ये लोग जो है बड़े खुश हुए कि ओ नबी अलैहिस्सलाम के कासिद आ रहे हैं, तो उनका इस्तकबाल करने के लिए ना खूब तैयार व्यार होकर के सारे के सारे बाहर निकल आए। ठीक है ना, अब इन लोगों की तैयारी क्या होती थी, ठीक है ना, ये तैयारी जो है ना इनकी तैयारी होती थी तलवार पहन लेना, ठीक है ना, यानी हथियार जो थे ये इनके यहाँ जीनत की चीज होती थी ना, ठीक है, जीनत की भी चीज होती थी, लड़ाई की भी और जीनत की भी। अब ये पूरा डेक टप होकर के सारे बाहर आकर के उनका इंतजार कर रहे हैं। वो जब आए ना, उन्होंने दूर से देखा कि ये लोग तो तलवार वलवार लेकर के आए हैं। इनकी असल में एक हिस्ट्री थी इस कबीले के साथ, वो ये कि वलीद बिन उकबा अलैहिस्सलाम की जो फैमिली थी ना, उनका और बनी मुस्तलिक का जो है ना आपस में लड़ाई वड़ाई हो चुकी थी माजी में, ठीक है ना। तो अब इनके दिल में जो है ना वो एक ख्याल आया, और ये ख्याल जो है वो शैतान ने 100% शैतान ने डाला था, कुरान मजीद की आयत भी इसके ऊपर नाजिल हुई कि ये लोग ना मुझे मारने के लिए आए, क्योंकि वो पुरानी दुश्मनी है, और पुरानी दुश्मनी के ऊपर अरब लोग जो है वो टिपिकली मार दिया करते थे, ठीक है, तो ये मुझे मारने के लिए आए हैं, और देखो तलवार वार भी लेकर के आए हुए हैं। वो उधर ही से मुड़े यू टर्न और वापस, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के वापस गए, और वही जो ख्याल इनके दिल में डाला था शैतान ने, वही आकर के नबी अलैहिस्सलाम को बता दिया कि भाई वो लोग जो है ना वो तो दीन इस्लाम से मुर्तद हो गए, और वो तो मुझे कतल करने के लिए, मैं आपका कासिद बन करके गया और वो मुझे कतल करने के लिए बाहर निकले हुए थे। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई, आप सल्लम के ससुराली भी थे, राइट, जुवेरिया तरान के वालिद वालिद और पूरा का पूरा कबीला, नबी रसूलुल्लाह के नहीं ये कैसे हो सकता है यार। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद अलैहिस्सलाम को भेजा कि तुम रिकन्फर्म करके आओ कि क्या वाकई ऐसा हो गया है। खालिद बिन वलीद अलैहिस्सलाम पहुंचे, पता किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर ना फिर सूरह हुजरात की ये वाली आयत नाजिल हुई कि या अय्युहल लजीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनू, कि जब तुम्हारे पास ए ईमान वालों अगर कोई फासिक कोई खबर लेकर के आए ना, तो तुम उसको ऐसे ही बिलीव ना कर लिया करो, बल्कि तहकीक करो। तबैयनों का मतलब तुम इसके बारे में खूब तहकीक करो। अन तुसीबु कौम में जहालतिन फतुसबिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग जो है ना किसी कौम को तकलीफ पहुंचा दो गलतफहमी की वजह से, जहालत की वजह से, और फिर उसके बाद जो है ना तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े इसके ऊपर। ठीक है, तो तहकीक कर लिया करो फासिक जब भी तुम्हारे पास आए। ठीक है, तो एक तो सबक याद रखें हमेशा कि किसी की बात ऐसी यकीन ना कर लिया करें, सिर्फ नेकों की बात पे यकीन किया करें जिनको कि आप जानते हो, ठीक है ना, जिनके बारे में आपको पता है कि वो नेक हैं, सिर्फ उनकी बात पे यकीन किया करें, उनके अलावा जिनको आप नहीं जानते हो ना उनकी बात पे हरगिज हरगिज यकीन नहीं कर लिया करें। ठीक है, तो मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, ये नेकों से नहीं भरा हुआ है, ठीक है ना। इसके ऊपर कौन लोग होते हैं, नेक लोग हैं ना वो ज्यादा, उनके पास टाइम भी नहीं होता इनके ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो ज्यादातर जो लोग होते हैं मीडिया के अंदर वो सारे के सारे फासिक और फाजिर ही के डेफिनेशन में आते हैं, उनकी बात तो हरगिज हमें यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तबय्यनु कर सकते हैं तो करें, अल्लाह का हुक्म है तबय्यनु, तो तबय्यनु अगर कर सकते हैं, फिर उसके बाद अगर कंफर्म हो जाती है फिर आप यकीन कर लें, लेकिन उसके बगैर ना करें। जी, फासिक
फाजिल
कहते हैं ऐसे गुनाहगार को जो गुनाह करता भी है और लोगों को दिखाता भी है, खुल करके गुनाह करना जिसको, ठीक है ना, ओपनली गुनाह करना। और फाजर का जो लफ्ज है ना ये गुनाहगार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है, जो बहुत ज्यादा गुनाह करने वाला उसको फाजर कहा जाता है, लेकिन करता भी है, छुपाता भी है, और थोड़ा सा इतना इतराता नहीं है लेकिन छुपाता है, तो उसके लिए फाजर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और फासिक उसके लिए जो कि बात, कोई शख्स जिससे कि कभी कभार गुनाह हो जाए करे, नादिम हो शर्मिंदा, उसको फिर ना फासिक कहा जाएगा ना उसको फाजर कहा जाएगा। सही है, अच्छा, तो अब इनसे ये गलती हो गई, और ये गलती जो है वो नबी अलैहि सलाम ने उसकी आप सल्लम ने तो फौरन तहकीक कर ली, आप सल्लम को पता चल गया, तो कोई मसला नहीं हुआ और मसला जो है वो हल हो गया। अब इन्होंने जो है ना वो ये काम जो किया था, तो इसके ऊपर बज़ाहिर ऐसा लगता है अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो है वो इन सहाबी वलीद बिन उकबा ही को फासिक कह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जाहिरी अल्फाज से तो ऐसे ही लगते हैं ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, यानी मेरे नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ईमान वाले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर उनके बाद जो है वो जितने सहाबा मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, तो तुम्हारे पास जब फासिक आए कोई खबर लेकर के, भाई कौन लेकर के खबर आया था, हजरत वलीद बिन उकबा रज़ियल्लाहु अन्हु खबर लेकर के आए थे ना, ठीक है ना, तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इन्हीं को फासिक कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं था, इसलिए कि ये जो है वो ईमान वालों में शामिल थे, ये सहाबे कराम में शामिल थे, ये मुर्तद या मुनाफिकीन में शामिल नहीं थे। और सहाबे कराम जितने भी हैं ना, वो सारे के सारे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन के अंदर सारे के सारे दाखिल हैं, तो वलीद बिन उकबा भी उनके अंदर दाखिल हैं, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला ने इनको फासिक क्यों कहा, तो इसके ऊपर मुफस्सरीन ने फिर एक्सप्लेनेशंस दी हैं, बड़ी जबरदस्त एक्सप्लेनेशंस दी हैं। एक एक्सप्लेनेशन उनमें वही है जो कि हमने भी आपको थोड़ी देर पहले कही कि शैतान ने आकर के खबर दी, और शैतान जो है वो क्या है भाई, नेकोकार परहेजगार है, शैतान तो सबसे बड़ा फासिक है, ठीक है ना, खुल करके गुनाह करता है, सबको बता के गुनाह करता है, जो उसको जानने वाले लोग होते हैं सबके सामने बड़ा एतरा करके गुनाह करता है, ठीक है। तो शैतान ही तो असल फासिक है, तो शैतान ने आकर के इनको जो इस तरह इस किस्म के वसाविस डाले ना, इनको चाहिए था कि वो उसके ऊपर यकीन नहीं कर लेते, बल्कि इनको चाहिए था कि वो तहकीक कर लेते, ये इनसे गलती हो गई, इन्होंने तहकीक नहीं करी, ठीक है। अच्छा, ये तो एक तफसीर हो गई। दूसरी तफसीर जो है वो इन्होंने हजरत इदरीस कांधलवी रहमतुल्लाह ने बड़ी जबरदस्त लिखी है, ये भी आप लोगों को थोड़ी बहुत है, थोड़े से तो बड़े हैं आप लोग माशाल्लाह अक्सर, और बाकी तो ज्यादा बड़े हैं, तो समझनी चाहिए कि भाई अल्लाह ताला ने ना इस लफ्ज फासिक को यहाँ पर जो इस्तेमाल किया है ना, इसका मतलब जो है वो फासिक नहीं है जो जिसको के खुल के गुनाह करने वाला शरीयत में कहा गया है, वो फासिक नहीं है, बल्कि यहाँ पर फासिक का जो तर्जुमा है ना, वो बस इतना है कि गलती हो गई, ठीक है ना, बस इतना है कि गलती हो गई, गुनाह का काम हो गया, भाई गुनाह का काम तो और भी लोगों पर हो गया था, लेकिन तौबा कर ली उससे, माफ हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से अल्लाह ताला कभी जो है ना वो कुरान मजीद के अंदर एक ही लफ्ज को मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके ऊपर एक कुरान मजीद की जबरदस्त किस्म की दलील भी दी, वो क्या कि मासियत किसको कहते हैं पता है, मासियत आसा ऐन सौद अलिफ मकसूरा असा, ठीक है, मासियत कहते हैं गुनाह को, अल्लाह ताला की नाफरमानी को कहते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया व असा आदमु रब्बहु फगवा, कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी करी और वो गुमराह हो गए, ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कैसी नाफरमानी करी थी, आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई थी, आदम अलैहिस्सलाम का इरादा नहीं था नाफरमानी करने का, ठीक है ना, और आदम अलैहिस्सलाम ने कोई बड़ी कस्म की नाफरमानी नहीं करी थी, एक वो शैतान की कस्मों की वजह से और भूलने की वजह से जो है वो जरख्त के करीब चले गए थे, फल खा लिया था, ठीक है ना। तो असा का लफ्ज अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल किया, और उसी तरीके से यही असा का जो लफ्ज है फेल मुजारे में डाल के प्रेजेंट टेंस में डाल करके यासू बनता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यासिल्लाह व रसूलहू وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, ठीक है ना, कि जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी करी और उसके रसूल की नाफरमानी करी और हुदूद से बाहर निकल गया, तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में चला जाएगा। तो यहां पर भी अल्लाह ताला असा का ही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां पर भी असा का लफ्ज इस्तेमाल किया था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी और ये खुलूद फिन नार, हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहने वालों की नाफरमानी, कितना बड़ा फर्क है दोनों के दरमियान, लेकिन लफ्ज वही इस्तेमाल किया दोनों में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फासिक का भी जो लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो बस डिक्शनरी मानी में इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब जो है ना वो खुल के गुनाह करना नहीं होता, ठीक है। तो बहरहाल ये इस तरह से ना हमारे अकाबरीन जो है वो सहाबे कराम को डिफेंड किया करते हैं, और उसकी दलाइल देकर के डिफेंड करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि नहीं हमें बड़ा पसंद है इस वजह से वो अच्छे हैं, वो उनसे गलत नहीं हो सकते, बाकायदा प्रूफ्स हैं हमारे पास जी। वो आयन सौद अलिफ असा, ये आयन सौद या अलिफ मरबूता के साथ लिखा जाता है, असा आदमु रब्बहु, आदमु रब्बहु पाकावा। ठीक है, सूरह ताहा के अंदर ये आयत आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हो गया। इसके बाद फिर हाँ, एक और बड़ा अजीब ना अजीब मामला, एक और सहाबी थे अब्दुल्ला बिन औसजा, तो उनको ना नबी अलैहिस्सलाम ने कबीले की तरफ भेजा, बनी अम्र बिन हारिसा वो कबीला था। तो आप ना उनको एक लेटर लिख करके इस कबीले के लिए दिया कि इनको जाकर के मेरे मकदूब दे दो। तो जब वो पहुंचे ना वहां पर, तो उन लोगों ने ना इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन क्या किया उन्होंने,
अच्छा
बनी अम्र बिन हारिसा और जो सहाबी गए थे अब्दुल्ला बिन औस जा इनसे, तो इन्होंने क्या किया कि नबी अलैहिस्सलाम को जो खत था ना उसको पानी से धोया, और जो कुएं की के अंदर लटकाने वाली डोल होती है ना, तो उसके तले से जो उसके नीचे का पार्ट होता है ना, वो उसके साथ उसको बांध दिया, किसी तरीके से चिपका दिया या बांध दिया। नबी अलैहिस्सलाम के लेटर के साथ इन्होंने यह मुकल्ला ये हरकत करी। अजीब ना, धो करके पानी से धोने से तो रोशनी वैसे भी खत्म हो जाती है, और उसको नीचे जो है ना वो ऐसे करके चिपका दिया डोल से। तो नबी अलैहिस्सलाम को जब अब्दुल्ला बिन औस ने आके ये वाकया बयान किया ना कि ये ऐसे क्या उन्होंने आपसे के खत के साथ आपके खत के साथ, तो आपसे फरमाया कि इन लोगों की अकल जो है ना ये चली जाएगी, इन लोगों की अकल चली जाएगी। तो हजरत ने यहाँ पे लिखा है कि उस वक्त से लेकर आज तक इस कबीले के लोग अहमक और नादान मशहूर है, अहमक और नादान, ठीक है ना, फातिरुल अकल और गूंगे हुआ करते हैं इस कबीले के लोग, यानी जिनकी अकल जो है ना वो रिटार्डेड किस्म के, और इनके तो ऐसा जो है ना उनके ऊपर बवाल, जैसे कि जिसने फाड़ा था वो पारिस वाला, उसने नबी अलैहिस्सलाम के साथ फाड़ दिया था ना, तो उसकी पूरी नस्ल को अल्लाह ताला ने जो है ना वो खत्म कर दिया था, उनकी बादशाहत खत्म हो गई थी। फिर तो इस कबीले के साथ भी फिर ऐसा ही हुआ, और जाहिर करने वाला एक दो बंदे ही होते हैं, लेकिन बाकी सारे खड़े होकर तालियां बजा रहे होते हैं और तमाशा देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। तो इस वजह से अजाब फिर सबके ऊपर आता है। अच्छा, फिर एक है सरिया बिन, अच्छा एक बड़े इंटरेस्टिंग किस्म का लेकिन इम्पोर्टेंट अहम हुक्म है उसके अंदर, एक जो था ना सरिया अलकमा बिन मजस, ठीक है, तो उनको ना नबी अलैहिस्सलाम ने जद्दा की तरफ भेजा। जब आप को ये खबर मिली कि हबशा से ना कुछ वहशी लोग यानी अफ्रीकन जो है ना वो यहाँ पर आए हैं गड़बड़ की नीयत से, ठीक है ना, कोई मुसलमानों के ऊपर अटैक करेंगे या डाका डालेंगे कुछ करेंगे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने 300 सवारों के साथ अलकमा बिन मजस को जो है ना वहां पे भेजा कि भाई उनको जाके एनकाउंटर करो, आगे नहीं बढ़ने देना। तो वो लोग खबर सुन करके सारे के सारे भाग गए, और जो जो रेड सी है उसके अंदर बहुत सारे जजीरे हैं जिनके अंदर आजकल ये लोग बड़े रिजोर्ट्स रिजोर्ट्स बना रहे हैं, तो किसी जजीरे में जाके छुप गए, गायब हो गए, ठीक है। अब ये जो सहाबा थे ना 300, ये वापस आ रहे थे, तो रास्ते में अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने आग जलवाई, ठीक है, बॉन फायर या कैंप फायर, कैंप फायर तो बहुत छोटी सी होती है, उन्होंने कोई बड़ी सी आग जलवाई होगी, ठीक है। और कुछ लोग जो थे ना वो उनमें से जल्दी कर रहे थे, जल्दी चलो घर पहुंचना है, तो इनको जो है ना वो सूजी के ये लोग क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं ना, वो तो होता है भाई अमीर हूं मैं, मेरी बात मान करके चलो, डिसिप्लिन के साथ हमने चलना है, ऐसे क्यों थोड़ी ये जल्दी जल्दी घर पहुंचना है। तो उनको एक सूजी ना कुछ, तो उन्होंने आग जलवाई और उन लोगों को हुक्म दिया आग में कूद जाओ, ठीक है, मैं अमीर हूं, अमीर की अताअत जो है वो फर्ज होती है, नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अमीर बनाया है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम आग में कूद जाओ, ठीक है। तो उनमें से कुछ लोग जो है ना वो तो हो गए तैयार, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई आग से बचने के लिए तो हमने सारा सारा का सारा काम किया हुआ, तुम आग में कूदने के लिए कह रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, असल में कूदने के लिए तुम्हें नहीं कह रहा था, ठीक है। अब सहाबा कराम ने तो फिर हर चीज नबी अलैहिस्सलाम को बतानी होती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और बताया कि भाई उन्होंने ऐसे ऐसे किया हमारे साथ, यानी ये खेल खेला कि हमें आग में कूदने के लिए हुक्म दे दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गालिबन इसी मौके पर यह हदीस फरमाई, उर्दू तर्जुमा यहाँ पे है, अरबी हसन में मौजूद नहीं है, कि ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, ठीक है, कि अल्लाह ताला की अगर कोई नाफरमानी है ना, यानी वो आपको खुदकुशी करने का हुक्म दे रहा था ना, तो ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है, इसमें किसी मखलूक की अताअत जायज नहीं है, चाहे वो तुम्हारा अमीर क्यों ना हो, ठीक है ना। तो तो ये उसूल जो है वो शरीयत का हमें मिल गया कि अल्लाह की नाफरमानी की सूरत में किसी भी गैर अल्लाह की अतात हरगिज हरगिज नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर उसके बाद एक वाकया, बल्कि दो वाकया रह गए हैं, टाइम तकरीबन खत्म होने वाला है, लेकिन 2 मिनट है। तो ये हुआ कि नबी अलैहि सलाम ने अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला के साथ जो है ना 150 या 200 आदमियों को कबीले तय की तरफ भेजा। कबीले तय, तो से कबीले तय, तो इसके बुत को तोड़ने के लिए, जिसका नाम था फुलुस या फुल्स। ठीक है, तो ये लोग वहां गए और हमला किया उनके ऊपर। क्या हो? हाँ, कबीले तय 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 किसी में जैसे मशहूर है वो, आपस में अंकल जिसका सर है,
पूछने
पूछने वाला था आपने पहले बता जी, तो ये था हातिम ताई वाला कबीला, जिसकी वजह से वो ताई कहलाता है, कबीले तय का रहने वाला था। ठीक है, तो हातिम ताई का तो इंतकाल हो चुका था। हातिम ताई जो है ना, ये एक जेन्युइन इंसान था, यानी सिर्फ किस्से कहानियां मशहूर नहीं है, बल्कि कबीले तय में एक इंसान रहता था जिसका नाम हातिम ताई था, और ये वाकई बहुत ज्यादा जेनरस आदमी, बहुत ज्यादा सखी। ठीक है ना, तो वो अल्लाह ताला ने उसको खूब माल पैसा भी दिया था, लेकिन ये खर्च बहुत ज्यादा करता, पूरा पूरा उठा करके दे दिया किसी को। ठीक है ना, फिर अल्लाह ताला और दे देते, ये पूरा पूरा उठा के दे देता, फिर अल्लाह ताला और दे देते। तो इसके बारे में मशहूर था, नबी अलैहिस्सलाम को पता था इसके बारे में। ठीक है, तो कबीले तय जब ये लोग पहुंचे तो वहां पे ना फिर शकून मारा, कुछ आदमी और कुछ मवेशी गिरफ्तार करके ले आए, इनके बुतखाने को जो है वो गिरा दिया, और कैदियों को जो लेकर के आए ना, तो उनमें हातिम तय ताई की बेटी सफाना भी मौजूद, और हातिम ताई का एक बेटा भी था उदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरार हो गए। फरार होकर के वो शाम चले गए। शाम में, क्योंकि ये कबीला जो था ना वो क्रिश्चियंस की एक सेक्ट से ताल्लुक रखता था, क्रिश्चियनिटी की, तो वो क्योंकि शाम में भी क्रिश्चियंस ही होते थे, तो वो शाम भाग गए। लेकिन बेटी जो है ना वो कैदियों में गिरफ्तार होकर के नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दी गई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इन कैदियों को जो है वो एक जगह इस तरह से रखा जाता था, तो वहां रखा। तो आप सरम जब वहां से गुजर रहे थे ना जी,
क्वेश्चंस
क्रिश्चियंस बुतों को पूजते नहीं थे, लेकिन कुछ क्रिश्चियंस की सेक्ट के अंदर बुत परस्ती तक शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो ये इसी वजह से मैंने कहा कि ये क्रिश्चियंस की एक जरा डिफरेंट किस्म के सेक्ट थी, एक सेक्शन यानी जिसको कहते हैं फिरका। ठीक है, तो इसके अंदर बुत परस्ती तक जो है वो शुरू हो चुकी थी। तो हातिम ताई की बेटी जो है ना वो कैदियों के साथ थी, तो नबी अलैहिस्सलाम जब वहां से गुजरे ना, तो उन्होंने जो है ना वो खड़े होकर के नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप तो मर गया और जो मेरा खबरगीर था, मेरा वली था यानी भाई, तो वो फरार हो गया, अब आप ना हम पर एहसान कीजिए, अल्लाह आप पर एहसान करेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर के कहा कि भाई वो कौन था आपका सरपरस्त जो फरार हो गया? तो सफाना ने कहा कि मेरा भाई उदी बिन हातिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही जो अल्लाह और उसके रसूल से भागा है, बेहतर है कि मैं तुझ पर एहसान करता हूँ, लेकिन आप जाने में जल्दी मत करें, मैं चाहता हूँ कि आपके कौम का कोई काबिल इत्मीनान शख्स मिल जाए तो उसके हमरा तुम्हें भेज दूँ, यानी मैं सबको तो नहीं छोड़ा, तुम्हें अकेला मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन कोई अच्छे लोग मिलेंगे तो उनके साथ तुम चले जाना। ठीक है, तो फिर 2-3 आदमी कुछ दिनों के बाद जब मिल गए ना, कबीले तय के ही लोग थे और वो जा रहे थे शाम, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सफाना को उनके साथ शाम रवाना कर दिया। वो ठीक जा करके ना अपने भाई के पास पहुंची और अपने भाई को जा करके अच्छा वो मुसलमान हो गई, और फिर वो वहां से रवाना हुई, भाई के पास पहुंची और भाई को जा करके उन्होंने बाकायदा इस्लाम का पैगाम दिया। तो उनके भाई ने उनकी बात को मान लिया और कहा कि तुमने मुझे बहुत अच्छा पैगाम दिया है, चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, तो उदय बिन हातिम जो है फिर मदीना तैयबा पहुंचे और पहुंच करके मुसलमान हुए, और इनका बड़ा तफसीली वाकया हम पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। उदय बिन हातिम ही थे ना जिनकी मुलाकात किससे हुई थी रास्ते में, जब वो नबी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए तशरीफ ला रहे थे।
उदय बिन
मैं गलत तो नहीं याद आ रहा हूँ जी, वो तमीमदारी थे, सही आप, हाँ मुझे वही शक होने लगा था। हाँ उनकी नहीं, तमीमदारी की मुलाकात दज्जाल से हुई थी, उदय बिन हातिम की दज्जाल से नहीं हुई थी, सही है। तो ये फिर मुशर्रफ बिन इस्लाम हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज की क्लास खत्म करते हैं। रमजान मुबारक का महीना भी शुरू होने वाला है और इसके बाद जो है ना एक मेजर वाकया गजवाए तबूक का है, जो कि रमजान मुबारक के बाद ही इंशाल्लाह शुरू करेंगे। किसी भी कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो? इन्होंने क्या सवाल किया, व्हाट इज द टेक ऑन दिस सहाबी, हाँ कि वो फासिफ ये नहीं थे, वो कुछ बात हो गई। कोई सवाल, एनीथिंग? सफाना, चलिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह।